السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کہاں کہاں سے بچے پہنچے ذرا بتاؤ. جام نگر. ایک منٹ. جام نگر میں کون سے کالج کے بچے ہیں؟ اسکول کے یا کالج کے؟ کالج کے یا اسکول کے؟ کون سے اسکول کے؟ الگ الگ اسکولوں کے ہیں. چلو اور کہاں سے؟ انجار سے. انجار سے کتنے بچے آئے ہیں ذرا بتاؤ؟
اسٹوڈینٹ
چار آئے.
کچھ
اور بھائی
کچھ کے
پوچھ کے کتنے ہیں ذرا بتاؤ؟ ماشاء اللہ. اور راجکوٹ. راجکوٹ کے کتنے ہیں؟ راجکوٹ کے ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ. اچھا بھائی اور کہاں سے آئے؟ واکانیر کے کتنے ہیں ذرا بتاؤ؟ واکانیر کے بہت تھوڑے ہیں, ان کے تو زیادہ ہونے چاہیے. اچھا اور بھائی کہاں سے ہیں؟ موربی. موربی کے کتنے ہیں؟ تین. اور بچاؤ سے؟ بچاؤ کے ایک ہے بس. اچھا اور کہاں سے آئے بھائی؟ اچھی بات. جام نگر میں کون سے کالج کے بچے ہیں جی؟ کتنے ہیں ایس یو ٹی وہاں سے کتنے ہیں؟ اچھا اور اچھا ہاسٹل والے پہ ہیں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں ایسے بچے پہ آئے ہیں؟ آپ کہاں کہاں کون سے ہاسٹل میں رہتے ہیں؟ بھوج میں. کہاں کے ہو آپ؟ موربی کے آپ؟ ہاں ماشاء اللہ جی. ہاں بھائی آپ کہاں سے ہو؟
واکانیر سے.
کہاں پڑھتے ہو؟
احمدآباد.
احمدآباد میں ماشاء اللہ. احمدآباد میں کہاں پڑھتے ہو؟
ابھی اسی میں کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں.
اچھا اچھا. اور ہاسٹل والے بچے اور کون ہیں جی؟ آپ کہاں سے ہو؟ واکانیر. کہاں پڑھتے ہو؟ اچھا اچھا. اور بھائی ہاسٹل کے بچے اور کوئی ہے جی؟ بھائی کہاں سے؟ سورت سے. کہاں پڑھتے ہو؟ راجکوٹ میں. چلو بھائی اور کوئی ہاسٹل کے بچے ہیں جو ہاسٹلوں میں رہتے ہوں ایسے بچے؟ یہاں بھی تھوڑی جگہ ہے, یہاں آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. اچھا یہ تو سیلون والا ہے, سری لنکا سے نا؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آپ بہار سے نا؟ بہار میں کون ضلع؟ ہاں ماشاء اللہ. آ جاؤ آ جاؤ. یہ بچے یہاں آ جائیں گے, جگہ ہو جائے بھائی. یہاں جاؤ تاکہ اوروں پہ جگہ ہو جائے. اگر جگہ نہ ہو تو یہاں آگے آ جاؤ بھائی. آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, ٹھیک آگے آ جاؤ. یہاں جگہ ہے. ارے خان صاحب آگے آؤ نا, جوان ہو کر بڈھے کی طرح چلتا ہے خان صاحب مجھ تک کا بیٹا. ارے بھائی جوان ہو بڈھے کی طرح چلتے ہو بھائی. آگے آ جاؤ بھائی. او بھائی یہاں آگے آ جاؤ بھائی. آگے آ جاؤ, دو چار آگے آ جاؤ. یہاں جگہ خالی ہے, دو تین چار ساتھی آگے. اچھا بھائی یہ بتاؤ, کسی کے ہاسٹل میں یا کسی کے اسکول میں کوئی کام ہو رہا ہے تبلیغ کا؟ کوئی نماز اجتماعی پڑھتے ہوں, تعلیم کا عمل ہوتا ہو, بچوں کی ملاقاتیں ہوتی ہو, گشت ہوتا ہو, ایسی کوئی ہاسٹل والے یا کوئی اسکول والے؟ گزشتہ اچھا تین سال سے تو اجتماع نہیں ہوا اس لیے آپ کو نہیں پتا ہوگا, لیکن ہر مرتبہ جو اسٹوڈنٹس کے جوڑ ہوتے ہیں اس میں اسکول میں ہاسٹل میں بچے کیسے رہیں اس کی ان کو یہاں رہبری ہوتی ہے, تو اس میں بتاتے ہیں کہ ہماری پڑھائی کیسی ہو, ہمارا رہنا سہنا کیسا ہو, ہماری اور بچوں کے ساتھ کا رہن سہن کیسا ہو. تو اس سے پہلے کے جوڑ میں کوئی شریک ہوا ہے تم میں سے؟ ماشاءاللہ ایک. اور کوئی شریک ہوا ذرا اچھے سے ہاتھ اٹھاؤ, اچھے سے اٹھاؤ, دیکھے ایسے ایک دو. اچھا منہ تم تو ابھی تو پیدا ہوئے ہو, کون سے جوڑ میں آئے تھے؟ آئے تھے؟ اچھا ہاں تو ہاتھ اٹھاؤ. شاباش شاباش. کون سی کلاس پڑھتے ہو؟ تو تین سال پہلے راجکوٹ ہوا تھا تو تم تیسری میں تھے تب آئے تھے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں تو آپ صحیح ہو, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو. شاباش. کیا نام ہے بیٹا؟ عبدالرؤف. واہ بھائی واہ. اچھا تو جو اسٹوڈینٹس پہلے آئے تھے جوڑوں میں ان کو کچھ بات یاد ہے کہ کیا باتیں کہتے تھے؟ भाई, इसीलिए मैं अभी आपको कर्जदारी पूछ रहा हूँ। आपको जो मैं पूछ रहा हूँ कर्जदारी, चूंकि गुज़िश्ता शपथ दिया गया था, लेकिन इसमें तो अक्सर वो हैं जो जोड़ों में शरीक नहीं हुए। इससे पहले कौन कौन जोड़ में शरीक हुए, जरा उठाओ, कितने बच्चे हैं? एक दो, सर उठाओ ना ध्रुव, एक दो ध्रुव, तीन चार पांच, सिर्फ पांच है, बाकी सब पहली बार शरीक हो रहे हैं।
अच्छा
चलो फिर मैं आप सब क्या कर्जदारी पूछूं। देखो बात यह है कि इज्तिमा के दौरान हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को ही मुस्तकिल अलग थोड़ी देर के लिए बुलाते हैं यहाँ, और यहाँ जिस तरह आपको अलग बुलाया ऐसे और लोगों को भी अलग अलग बुलाते हैं। सुबह में देखो अजामा को अलग बुलाया था, इसी तरह और भी लोगों को मौका होता है तो उनसे अलग अलग बात करते हैं। तो आपके दिल में ये सवाल होना चाहिए कि भाई हमसे अलग क्यों बात करते हैं? बोलो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपको हमको खाली दीन की बात सुनाने के लिए हमने आपको बुलाना होता तो भाई पिंडाल में कौन सी बात हो रही है? अरे बोलो, आप लोग नाराज हैं तो बोलते क्यों नहीं हो? फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा मैं बताऊँ पिंडाल में कौन सी बात हो रही है? तो हम आपको यूं कहते हैं कि भाई वहीं जाकर बैठो और वो बात सुन ले। बोलो, ऐसा कहते नहीं कहते? लेकिन ऐसा नहीं किया हमने, आपको यहां अलग से बुलाया और आपसे अलग से हम बात कर रहे हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? देखो बात यह है कि जिस तरह दुनिया में जमीनें होती हैं, जमीनें तो जमीनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। आपने देखा है जमीनों की क्वालिटी? यहां की जमीन लाल है और लाल जमीन अच्छी के खराब फलद्रुप होती है। कैसी होती है? बहुत अच्छी खेती उससे होती है, काली जमीन। ये जमीनों में अलग अलग क्वालिटी होती है, जैसे अलग अलग क्वालिटी की जमीनों से अलग अलग उपज होती है, अलग अलग खेती की उपज होती है ना। ऐसे हमारे नबी इस्लाम ने यह फरमाया कि इंसानों के दिल भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, उनकी सलाहियतें अलग अलग क्वालिटी की होती है। अन्नासु मआदिन का मआदिन अज़्ज़हब वल फिद्दा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग ऐसे हैं जैसे माइंस होती है। माइंस को जानते हो आप लोग? कान खनिज होता है ना, उसमें से अंदर से लोग कोई सोना निकलता है, कोई चांदी निकलता है, कोई अलग अलग चीजें निकलता है। तो अलग अलग क्वालिटी की जमीनें होती है, माइंस होती है। हमारे नबी इस्लाम ने फरमाया कि इंसानों में भी लोग अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, हर इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन जमीनों की जो क्वालिटी होती है ना वो जमीन के अंदर होती है, उसको खोदकर बाहर लानी पड़ती है। अगर उसको खोदकर बाहर ना लाए तो वो जो चीजें अंदर है वो अंदर के अंदर दफन रहती है। बोला दफन रहती है? नहीं रहती। सोने वाले को सोने को निकालना पड़ता है, चांदी वाले को चांदी निकालना पड़ता है, पेट्रोल को पेट्रोल निकालना पड़ता है, डीजल वालों को डीजल निकालना पड़ता है। ऐसे दुनिया में भी चीजों में सलाहियत होती है, उसको भी जरा घोटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आप चाय के शक्कर में शक्कर डालो और हिलाओ नहीं तो फीकी रहेगी या मीठी हो जाएगी? अरे बोलो, उसमें तो शक्कर डाली हुई है, फिर क्यों फीकी है? जी गोली नहीं है, उसको मिक्स नहीं किया तो शक्कर डालने के बाद भी वो फीकी फीकी है। बोलो, होती नहीं होती? ऐसे उसको घोट दो, थोड़ा सा उसको घोल दो तो वो मिठास जाहिर हो जाता है। ऐसे ही हमारे बच्चे अलग अलग सलाहियतों के बच्चे होते हैं, और स्कूल में बच्चों के दिमाग तेज हो जाते हैं। स्कूल में जो बच्चे एक बच्चे वो हैं जो स्कूलों में नहीं जाते, खेतियों में होते हैं, अपने कारोबार में होते हैं, तो उनके मुकाबले में जो स्कूलों में बच्चे जाते हैं उन बच्चों के दिमाग अल्लाह पाक उसके अंदर इसके दिमाग की शेपों को अलग खोल देते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपने नारियल की छुरी देखी, नारियल की छुरी काटता है नारियल को, उसको तुमने कभी वो तेज करते हुए देखा है? अरे भाई, नारियल की छुरी को तेज करते हुए कभी तुमने देखा है? अरे देखा है कभी? और कसाई को उसको देखा होगा, नारियल की छुरी कभी तेज नहीं करनी पड़ती, उसको जितना कसाई वापरे वो नारियल काटने वाला वापरेगा इतना ही तेज होती चली जाएगी, जितना उसको इस्तेमाल करेगा इतनी ही तेज होती चली जाएगी। ऐसे इंसानों का दिमाग होता है, इसको जितना तुम इस्तेमाल करोगे उसको वो खुलता ही चला जाएगा, और अगर उसको इस्तेमाल ना करो तो ये इसकी मेमोरी डाउन होती चली जाती है। आप हजरात का दिमाग रोज इस्तेमाल होता रहता है तो गैर महसूस तरीके से कुदरती तौर पर अल्लाह पाक इसको खोलते ही चले जाते हैं। इसलिए फिर क्या होता है पता है, जब स्कूल के बच्चे बड़े बनकर जब मार्केट में आते हैं ना, तो लोग उनका अपना उनको अपना वडील बना देते हैं। क्या बना देते हैं बोलो? अरे बोलो जरा जोर से, वडील बना देते हैं। आप देखना अक्सर मोहल्लों में मस्जिद के ट्रस्टी यही लोग होंगे, संस्थाओं के ट्रस्टी यही लोग होंगे, मोहल्लों की कोई कमेटी बनी होगी तो उसके ट्रस्टी कौन होंगे? ये पढ़े लिखे लोग। तो इनको क्यों बनाते हैं? दूसरे मार्केट में इतने लोग होते हैं ना, इनको इसलिए बनाते हैं इनका दिमाग इस्तेमाल होते 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 अच्छा हो गया, तेज हो गया। कैसा हो गया बोलो? जैसे नारियल की छुरी वापरते 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 तेज हो गई, होती है ना ऐसे तेज? ऐसे पढ़ने वालों बच्चों का दिमाग पढ़ते 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 तेज हो जाता है। आप हजरत को हम यहां इसलिए बुलाते हैं कि ऐसे तेज दिमाग के साथ तुम बड़े होने वाले हो, तो आप अपने इस तेज दिमाग को अच्छा इस्तेमाल करके अच्छे बड़े बनो। अपने इस तेज दिमाग को क्या करके बोलो? इस्तेमाल करके क्या बनो? आप पढ़े तो बनोगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इसलिए कि जो फेरिया होता है वो पेपर ही बन जाता है, जो फेरिया होता है वो, जो कली होती है वो फूल बनती है। अरे बनती है, छोड़ होता है वो झाड़ बनता है। आज आप सब छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और आप ग्रेजुएशन पूरा कर लोगे, और उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद आपकी जॉब लगेगी, सर्विसें लगेगी, लोग आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे, एहतराम की निगाह से देखेंगे, आपकी मान मर्यादा होगी। हाँ, लोगों में आप इज्जत से देखे जाओगे, तो आप उस जगह पर इंशाल्लाह पहुंचने वाले हो। तो एक तो हमारी आशा और इच्छा ये होती है कि आप इस ओहदों पर जरूर पहुंचो, इन मर्तबों पर अल्लाह आपको जरूर पहुंचाए, अल्लाह आपकी पढ़ाई को कारगर फरमावे, आपकी पढ़ाई फेल ना हो जाए, आपकी पढ़ाई बेकार ना हो जाए। एक तो हमारी इच्छा और आशा ही है, क्यों कि जितनी लाइनें दुनिया में हैं उन सब में अच्छे लोगों की जरूरत है। इंसानों किसकी जरूरत है भाई? मेडिकल में अच्छे लोगों की जरूरत है, स्वार्थी नहीं हमदर्द लोगों की जरूरत है, लोगों के शोबे में उसमें अच्छे लोगों की इंसानों को जरूरत है, ऑफिस में इंसानों को अच्छे लोगों की जरूरत है। दुनिया में मानसों की घट नहीं है, दुनिया में मानसों की, अरे जरा जोर से बोलो भाई, किसकी घट नहीं है? मानसों की, इंसानों की घट नहीं है, लेकिन एक चीज की घट है। बताओगे कौन से लोगों की घट? शाबाश, कौन बोला? शाबाश, ये छोटा सा लड़का बोला। अच्छे इंसानों की घट है दुनिया में, इंसानों की घट नहीं है। अरे बोलो, इंसानों की घट है? अभी देखो एक मेले में कितने लोग होते हैं, लेकिन अगर घट है तो किसकी घट है? अच्छे इंसानों की घट है, जबरदस्त उस अच्छे। तो इंसानों में घट क्या हो गई कि अक्सर लोगों में स्वार्थ आ गया है। क्या आ गया? इसलिए आप देखो कि डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब पेशेंट जब आता है तो उस पेशेंट को वो हमदर्दी की निगाह से नहीं देखता, बल्कि क्या समझता है? कस्टमर आ गया। जैसे दुकान पर कस्टमर लेने आता है तो उससे नफा लेने की उम्मीद होती है, ऐसे आज का डॉक्टर बीमार आदमी आता है ना तो उसको इस आशा से देखता है कि उससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे। उसको इसकी कोई नहीं पड़ी होती कि ये बेचारा तंदुरुस्त हो जाए या अच्छा होकर जाए, ये नहीं सोचता कि अगर इसकी जगह मेरा भाई होता। लेकिन जो दीनदार भले डॉक्टर होते हैं उनको देखने की एंगल बदल जाती है, वो किस एंगल से देखते हैं कि ये पेशेंट आया है बेचारा दुखी है, लाओ मैं उसका अच्छा हमदर्द बनूं। फिर उसके इलाज करने की थियरी बदल जाती है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसके साथ की वर्तणुकता बदल जाती है। हाँ, कि क्या हुआ, ये डॉक्टर तो है लेकिन अच्छा डॉक्टर है। कैसा डॉक्टर है? अच्छा, आप और हम अगर बीमार हों तो हमारे साथ कौन सा व्यवहार किया जाए, हम कौन सा व्यवहार करने को पसंद करेंगे? अच्छा, और खुदा को ना करे अगर किसी ने हमारे साथ गलत रवैये से पेश आए तो हमारी मजबूरी होगी उसके पास इलाज कराने की। ठीक है, हम इलाज कराएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे दिल से दुआ निकलेगी या बद्दुआ निकलेगी? जरा जोर से बोलो। पर तुम्हारे साथ तो उसने इलाज किया, फिर क्यों बद्दुआ करते हो? अरे भाई, उसने आपका इलाज किया, फिर क्यों बद्दुआ करते हो आप? जी, कि उसकी वर्तणुकता अच्छी नहीं है, उसने मुझे अच्छी निगाहों से नहीं देखा है, तो इलाज हम मजबूरी में करवा रहे हैं, लेकिन दिल उससे हमारा संतोष नहीं करेगा, उसके लिए हमारी आत्मा दुखेगी और उसके लिए बद्दुआ करेगा। अच्छा भाई बताओ, अगर लोगों की ऐसे आदमियों को बद्दुआ मिलती रहे तो ये आदमी दुनिया में सुखी होगा या दुखी होगा? अरे बोलो भाई, ये दुखी होगा। कि उस जगह पर, वो बड़ी जगह पर बैठा है, लेकिन पता नहीं पचासों नहीं हजारों लोगों की वो आत्माएं दुखाता है, तो वो वहां बैठकर भी दुखी होगा। इसलिए आप देखो, रोजाना पेपर पढ़ोगे ना अखबार, तो उसमें सुसाइड करने वाले लोग हैं। सुसाइड जानते हो क्या? किसको कहते हैं सुसाइड? खुदकशी, आत्महत्या करते हैं। उसमें अक्सर तुम देखोगे ऐसे बड़े बड़े लोग आत्महत्या करते हैं। झोंपड़े में रहने वाले गरीब लोगों की आत्महत्या करने की दास्तानें तुमको बहुत कम मिलेगी। उनमें आपस में कभी कंकास हो गया वो तो आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से वो आत्महत्या करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे ग्रेजुएट शुदा लोग, बड़े बड़े लोग, रोज उनका पेपरों में आपको पढ़ने मिलेगा कि वो आत्महत्या करके मर जाते हैं। क्यों क्या हुआ? कि उनके साथ लोगों की आह लग गई है। क्या लग गई बोलो? लोगों की आह लग गई, लोगों की उन्होंने आंधेड़ी दुखा दी। क्या दुखा दी बोलो? तो लोगों की बदनामी इनको लग गई। तो एक तो बड़ा बनने वाला ऐसा होता है जो स्वार्थी होता है, जिनको लोगों की बदवा लगती है, और एक वो होता है जिसके लिए हजारों लोग दुआएं करते हैं। क्या करते हैं बोलो? दुआएं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई हो, जरूर हो, अच्छे से अच्छी हो, और आप सब बड़े बनो और अच्छे बड़े बनो। कैसे बड़े बनो बोलो? अरे बोलो, कैसे बड़े बनो? अच्छे बड़े बनो। अगर अल्लाह आपको अच्छा बड़ा बनाए तो आप राजी हो कि नहीं हो? अरे बोलो, आप में से कौन कौन राजी है? जरा उठाओ। कैसा बड़ा बनना चाहते हो आप?
अच्छा।
लोगों की दुआएं मिले ऐसा, या लोगों की बदवा मिले ऐसा? अरे जरा जोर से बोलो। उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। कितने काम? एक तो जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से अच्छी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने अच्छा पढ़ा होगा तो अच्छी समझ पड़ेगी। वरना पैसे देकर, डोनेशन देकर डॉक्टर बनोगे तो समझ तो पड़ी नहीं है, बुद्धि तो चली नहीं है, पैसों से डॉक्टर बन गया तो बोला ऐसा आदमी अच्छा इलाज करेगा या ऐसा ही इलाज करेगा? अरे बोलो भाई, तो ऐसे लोग अच्छी दुआएं देंगे या फिर अच्छी दुआ नहीं देंगे? ऐसे लोगों क्योंकि उसको समझ नहीं पड़ रही है। तो इसलिए पहले, सबसे पहले आपके जिम्मे है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छी करो। आप देखो, आपके पीछे आपके माँ बाप बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक एक लड़के की फीस कितनी बड़ी होती है, आप देखो कितनी बड़ी फीस आपकी होती है। अक्सर माँ बाप आपकी फीस भरने के लिए कर्जा करते हैं। क्या लेते हैं? अक्सर माँ बाप आपकी फीस के लिए कर्जा लेते हैं। माँ बाप रोटी सूखी खाते हैं, कच्चा पक्का खा लेते हैं, घर कसर करते हैं, और इधर उधर से कर्जे करते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे को पढ़ाने की आशा रखते हैं। किस बुनियाद पर? कि हमारा बच्चा पढ़े लिख कर बड़ा होगा तो अच्छी जॉब करेगा, अच्छी सर्विस करेगा, तो हमारी आमदनी का जरिया ये बन जाएगा, हमारे घर का भरण पोषण करने का ये जरिया बनेगा। तो सच बताओ, उनकी आशा पूरी करनी चाहिए या उनकी आशा को निराशा से बदल देना चाहिए? अरे बोलो, क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या करना चाहिए आप हजरात को? अपनी पढ़ाई को टारगेट बनाकर अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होकर आप अच्छे से अच्छे बनो। ये क्यों आपको कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है कि अक्सर स्कूल कॉलेज के माहौल में आपकी कोई निगरानी करने वाला नहीं होता, आपकी कोई वॉच करने वाला होता है तुम कैसे पढ़ रहे हो। अब जिसके अंदर इन चीजों का एहसास हो, नहीं भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी मेहनत से यहां भेजा है तो मुझे अच्छी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, मेरे माँ बाप ने मेरे पर जाने माले कुर्बानी लगाई, मुझे अच्छा पढ़ना चाहिए, ऐसे बच्चे तो अच्छा पढ़ सकते हैं। वरना अगर जिसके अंदर ऐसा एहसास नहीं है, इतना ज्यादा उनके माँ बाप की कुर्बानी के बावजूद भी ऐसे बच्चे इनके स्कूलों में जाने को बजाय बनने के बिगड़ने का जरिया बना देते हैं। गलत बच्चों के साथ दोस्ती कर लेते हैं, गलत आदतों में मुब्तला हो जाते हैं, उठक बैठक गलत लोगों के साथ कर देते हैं। जिस दिन उनकी पढ़ाई पूरी होती है तो बजाय अच्छे क्वालिफाइड आदमी बनने के वो गंदी आदतों वाले बच्चे बनकर आते हैं। अभी भी मैं मजमे में देख रहा हूँ, बाज लोग बात नहीं सुनते, बातें करते हैं। अभी भी मैं मजमे में देख रहा हूँ, हमारे बात साथी बात नहीं सुनते हैं। अब आप बताओ कि दीन की बात जब वो नहीं सुनते तो अपने स्कूल में उस्ताद की बात कैसे सुनते होंगे वो? आप अंदाजा करो इसका, कि जो यहां मजलिस में बात नहीं सुनते वो वहां कैसे सुनते होंगे? तो फिर वो ऐसे बच्चे अपनी जिंदगी को जाये कर देते हैं, उनकी जिंदगियां जाये हो जाती है। इसलिए एक तो सबसे पहले हमको ये तय करना है कि हमारी पढ़ाई पर इंशाल्लाह मेहनत करके अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे। सब तय करते हो? कौन तय करते हैं? दूसरा आपको क्या तय करना है? देखो, पढ़ाई से तो आप काबिल बनोगे, पढ़ाई से आप क्या बनोगे? लायक बनोगे। पढ़ाई से कैसे बनोगे? लायक बनोगे, क्वालिफाइड बनोगे, पढ़ाई से आप काबिल बनोगे। लेकिन मकबूल अल्लाह बनाते हैं। मकबूल कौन बनाता है? मकबूल मतलब कि उसके कबूल, हाँ, कबूल अल्लाह करते हैं। अगर अल्लाह पाक ने आप हजरत को कबूल कर लिया तो आप हजरत की पढ़ाई के बाद आपके लिए इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन आएंगे कि आप सोचते रह जाओगे कि यहां जाऊं या वहां जाऊं, वहां जाऊं या यहां जाऊं, वहां जाऊं या यहां जाऊं। और अल्लाह लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देंगे और आपके हाथ में अल्लाह बरकत डाल देंगे और शिफा डाल देंगे। हमने देखा एक जमाने में चिकनगुनिया की बीमारी आई थी, क्या कहते हैं, उसमें हड्डियां पकड़ जाती थी। जैसे अभी कोरोना आया था ना, ऐसे एक जमाने में 8-10 साल पहले चिकनगुनिया आया था, 10-1 साल पहले, तो सबकी हड्डी पकड़ जावे, हाथ पकड़ जावे, ऐसा वैसा। तो हमारे शहर में एक डॉक्टर साहब थे, वो MBBS डॉक्टर थे। और एक थे डीएचएमएस. कौन से थे? डीएचएमएस. तो वो एमबीबीएस के बजाय डीएचएमएस के पास लाइन लगे रहे. मैं परेशान हो गया कि ये इसके वहां इतने पेशेंट. तो लोग ये कहते थे किसकी ये जो दवाई देता है उससे तंदुरुस्ती मिल जाती है, और वो एमबीबीएस वाला है उसके वहां आपको कोई फायदा नहीं होता. अच्छा, तो इसको तो माशाल्लाह इतनी अल्लाह ने बरकत दी, घर भी उसने बड़ा जोरदार बना लिया, गाड़ी भी ले आया. तो मुझे एक मरतबा मिला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो जोरदार गाड़ी लाए. तो वो कहने लगे कि माशाल्लाह चिकन गुड़िया की बरकत हुई अल्लाह ने उसमें. तो मैंने कहा लिखते हो चिकन गुड़िया एक्सप्रेस. कौन सी एक्सप्रेस? चिकन गुड़िया एक्सप्रेस. वो गाड़ियों पर लिखते हैं ना. तो अल्लाह ने बरकत दे दी. तो डीएचएमएस है लेकिन अल्लाह ने शिफा दे दी, और वो दूसरे एमबीबीएस है लेकिन अल्लाह ने शिफा उसमें से उठा ली. ये अल्लाह की तरफ से होता है. इसके लिए आप हजरत को दूसरी जो बात हम यहां जोड़कर कहते हैं वो क्या कहते हैं पता है? कि आपकी पढ़ाई का जमाना ऐसा गुजरे कि जिसमें हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, हमसे हमारा अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए. उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने स्कूलों में रहते हुए हम अल्लाह के साथ अपना ईमान ऐसा बनाएंगे कि हमसे हमारा अल्लाह नाराज ना हो जाए. अल्लाह सबसे ज्यादा जो नाराज होते हैं वो किससे होते हैं पता है? अल्लाह के अलावा किसी को करता धरता समझने से अल्लाह नाराज होते हैं. हम अल्लाह का फजल शर्क नहीं करते, और कभी भी किसी संजोग में हम शर्क से बचेंगे, कभी भी हम शर्क नहीं करेंगे. हमारा मजमा अल्लाह का एहसान उससे बचा हुआ है. ये सर किसके सामने झुकेगा? खाली और खाली अल्लाह के सामने. एक, अगर अल्लाह के अलावा किसी को हमने करता धरता समझा तो अल्लाह उससे सख्त नाराज होते, एक बात. उसके बाद दूसरी जो बड़ी चीज है जिससे अल्लाह नाराज होते हैं वो नमाजों के छोड़ने से नाराज होते हैं. नमाजों के छोड़ने से ईमान के बाद सबसे बड़ा जो इस्लाम का अमल है वो नमाज का है. नमाज किसी हल में किसी मुसलमान पर से माफ नहीं है. किसी हल में आप देखो हमारे बड़े सरदार हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु वो करबला में गए तो करबला वालों ने उनको धोखा दिया. क्या दिया? वो पूरा जमात मिलकर आई करबला में और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद करने के लिए. ये 72 आदमियों का काफिला है. कितना है? और वो बहुत ज्यादा है. तो अब लड़ाई लड़ रहे हैं. अब लड़ाई में नमाज का वक्त आ गया तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने सामने के दुश्मन से कहा कि भाई थोड़ी देर रुक जाए, हमको नमाज पढ़नी है. तो उसने कहा तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे. और वो जब नमाज पढ़ने लगे नमाज में ही उन पर हमले किए उन्होंने. अगर नमाज माफ होती तो इमाम हुसैन अपनी जान को बचाने के लिए नमाज को छोड़ देते, लेकिन जान चली जाए जा सकती है, नमाज नहीं जा सकती है. अगर नमाज माफ होती तो इनके ऊपर माफ हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो किसी हाल में नमाज हमारी न छोड़े. किताबों में आता है कि जिस मुसलमान की नमाज छूट जाती है ऐसा मुसलमान अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाता है. अब जो आदमी अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल गया पता नहीं वो किसकी जिम्मेदारी में जाएगा. वो तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा. अल्लाह की रहमो करम से अल्लाह की छत्र छाया से वो निकल गया, पता नहीं अभी वो कहां जाएगा. इसलिए हमारा दूसरी जो बात हम आपसे कहते हैं वो ये कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई के साथ हम नमाज किसी हल में न छोड़ें. जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो हॉस्टल में कोशिश करें कि जमात से नमाज पढ़ें. जो बच्चे स्कूल में हैं और दौरान तालीम नमाज का टाइम आए तो दौरान टाइम आप जमात से नमाज पढ़ो. उसका फायदा क्या होगा पता है? उसका फायदा यह होगा आप दो चार पक्के नमाजी होंगे ना, तो आप इज्तिमाई नमाज पढ़ोगे ना, आपको देखा देखी उस हॉस्टल के दूसरे बच्चे भी नमाज पढ़ते हो जाएंगे. समझ रहे हैं बात? सब बच्चों को बहुत सौ को नमाज पढ़नी होती है लेकिन शर्म आती है, कैसे नमाज पढ़े कहां पढ़े. लेकिन देखा कि एक पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है, तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा. इसलिए कोशिश करो कि अपने हॉस्टल में नमाज पढ़ो. अब नमाज पढ़ने के लिए तुम कॉलेज वालों से पूछने जाओगे कि हमको नमाज के लिए कमरा दो, रूम दो, तो वो तो मना कर देंगे कि भाई तुम धार्मिक प्रवृत्ति करोगे, या तो बहुत सारे धर्म के बच्चे रहते हैं हम उनको इजाजत नहीं दे सकते हैं. तो आप पूछने जाओगे तो कभी भी रजा नहीं मिलेगी, लेकिन तुम पढ़े लोगे तो वो कुछ बोलेंगे नहीं. हमने देखा है लोग फ्लाइट में भी नमाज पढ़ते हैं, हमने भी नमाज पढ़ी फ्लाइटों में. ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं, ट्रेन में भी हो जाती है. एयरपोर्टों पर नमाज पढ़ते हैं, वहां आप पूछने जाओगे हम ये नमाज पढ़ा, कहेंगे ना बाबा ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं. आप देखना अपने कमरे में नमाज पढ़ लो, अपने ग्राउंड में नमाज पढ़ लो, कोई झाड़ के नीचे नमाज पढ़ लो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. लेकिन आप पूछने जाओगे तो फिर उनको तो दूसरे धर्म के लोगों का भी फिर पूछना पड़ेगा, तो वो मसला हो जाता है. इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारा अल्लाह का फरीजा है, इसलिए हम क्या करें कि अपने बैग में मुसल्ला रखें. आजकल छोटे छोटे मुसल्ले आते हैं, पॉकेट मुसल्ले आते हैं, उन मुसल्लों को अपने बैग में रखो. क्यों? हम मुसलमान हैं और मुसलमान अच्छे दीन वाला होता है, वो अपने दीन को बर्बाद नहीं करता है. हाँ, हम अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे. उसका असर क्या होगा पता है? जिस वक्त हम अल्लाह को याद रखते हुए जिएंगे ना तो मौत के वक्त अल्लाह हमको याद आ जाएगा. और अगर हमने अल्लाह को याद रखते हुए नहीं जिया तो ठीक है, हम बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन पता नहीं हमारी मौत कैसे बुरी हो जाएगी, हमें नहीं पता. अभी हम लोग ये इज्तिमा भी कर रहे हैं ना, ये इज्तिमा ऐसा ही इज्तिमा अभी हम एक लोग करके आए सरखेज का, एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले सरखेज का इज्तिमा हुआ। अच्छा लोग जीते हैं तो कैसा अच्छा मरते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो एक दोस्त आया, एक लड़का है, सुबह में कहने लगा रात को मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया इज्तिमा में। हाँ इंतकाल हो गया, तो क्या हुआ था? कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, वो तंदुरुस्त आदमी था, 45 साल की उम्र मेरे जितना। लेकिन जब अपने घर से आया तो अपनी घरवाली से कहा कि देख अब मैं जा रहा हूं इज्तिमा में, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि मैं अल्लाह तू मुझे अपने रास्ते की मौत दे दे, इसलिए तो अपनी फिक्र करना और अपने आखिरत बनाते हुए वक्त गुजारना, इंशाल्लाह आखिरत में मिलेंगे। और उसके पास लोगों की अमानतें थी तो वो सब अमानत देकर आया। फिर इज्तिमा में लोगों की तश्कील कर रहा था, मगरिब के बाद बयान हुआ और रात को उसने सबकी तश्कीलें की। रात सोए हुए थे और जिस तरह अभी इज्तिमा हुआ इसी तरह रात को डेढ़ बजे वो दोस्त कहने लगा मेरे सर पर एकदम कोई गिरा। मैंने एकदम आंख खोली, क्या बात है? तो वो तो मेरा दोस्त है भाई, क्या हुआ तुझे? तो मेरे दिल में घबराहट होती है, तो मैंने उसको घबराहट हो रही थी तो जरा यूं हाथ फेरा और डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा तो इसको जरा ऐसा ही है, तो उसको जरा यूं सीना दबा रहे थे, तो एकदम वो कहने लगा कि सीना मत दबाओ, तुम भी कलमा पढ़ो और मुझे भी कलमा पढ़ाओ। और 3 मरतबा कलमा पढ़ाओ, दुनिया से चला गया। 3 मरतबा कलमा पढ़ा कि अच्छा जीने वाले ऐसे अच्छे अच्छे मरते हैं, तो ऐसे हम भी अच्छा मरना चाहते हैं तो अच्छा जियो। अपने पढ़ाई के जमाने में अल्लाह को नाराज ना करो, और अल्लाह जो नाराज होते हैं वो शिर्क से नाराज होते हैं, नमाजों के छोड़ने से नाराज होते हैं। सबसे ज्यादा जो अल्लाह नाराज होता है शिर्क से और नमाज के छोड़ने से। किताबों में आता है जो नमाज छोड़ देता है वो छोड़ते छोड़ते काफिरों के सफ में चला जाता है। जब वो उसके सफ में चला गया फिर वो मरेगा कैसे? फिर वो मरेगा ऐसा ही बुरा मरेगा। इसलिए आपकी नमाज न जाए। जो आदमी नमाजी होगा वो गुनाह कम करेगा, और जो बेनमाजी होता है शैतान उसके यहां बैठता है, और किताबों में आता है वो यहां से सूंड डालता है, यहां से उसके जैसे हाथी की सूंड होती है ऐसे शैतान की सूंड होती है, वो उसके कंधे पर बैठकर उसके दिल में वसवसे डालता है। जो नमाजी नहीं होता तो उसको ज्यादा शैतान गुनाह करवाता है, और जो गुनाह करते हुए जिएगा गुनाह करते करते मरता है। इसलिए इससे बहुत बचना है कि कॉलेज स्कूल के माहौल में हमसे गुनाह ना हो। उसके लिए अपनी नमाजों की एक पाबंदी करनी है। करोगे इंशाल्लाह आपको नमाजों की पाबंदी करोगे, जो हॉस्टल वाले हैं वो भी, और जो स्कूल लाइफ वाले हैं जो स्कूल में हैं और शाम को घर आ जाते हैं, उनको स्कूल में अगर नमाज का टाइम आता है अपने रिसेस में जरूर कोशिश करें कि अपनी नमाज को जमात से पढ़ें, ताकि और बच्चों की भी नमाज हो जाए। पढ़ोगे इंशाल्लाह कौन कौन क्या करता है हमारी नमाज नहीं जाएगी। तीसरी बात ये तुम्हारे अंदर, जिस तरह अभी मैं दीन की बात कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर एक जहन बन रहा है, ये रोजाना तुम्हें अल्लाह रसूल की बात 2-5 मिनट सुननी है, ताकि तुम इस फिक्रों पर बाकी रहो। क्योंकि हम आपको अच्छा बड़ा बनाना चाहते हैं। कौन सा बड़ा? अरे बोलो कौन सा बड़ा? अब अच्छा बड़ा कैसे तुम बनोगे? 2 चीजों से, एक अच्छा पढ़ोगे तो, और अच्छे की बातें सुनोगे तो। इसके लिए जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं 2-5 मिनट रोजाना फजाइल अमल फजाइल सदकात की तालीम करो। देखो 24 घंटे तुम अपने स्कूल का पढ़ते हो, बच्चों से मिलते हो, सारी बातें सुनते हो, अल्लाह रसूल की बात भी तो थोड़ी देर सुन लो। अल्लाह रसूल की तो थोड़ी देर बात सुनने के लिए 5-10 मिनट टाइम नक्की कर लो कि हम इस जगह पर रोजाना 5 मिनट अल्लाह रसूल की बात सुनेंगे, फजाइल अमल फजाइल सदकात की तालीम। जो बच्चे स्कूल हॉस्टल में नहीं रहते घर आ जाते हैं, वो क्या करें? अपनी मानसिकता अपनी विचारधारा दीनी रहे, उसके लिए क्या करने का? उसके लिए अपनी मस्जिद में 2-5 मिनट तालीम जो होती है उसमें जरूर बैठो। उसका फायदा क्या होगा पता है? हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच, हमारी विचारधारा दीनी बनती रहेगी, इस्लामी बनती रहेगी, अल्लाह के डर वाली बनती रहेगी। इसलिए जो बच्चे घरों को आ जाते हैं वो अपनी मस्जिद की तालीम में बैठे हैं, जो हॉस्टलों में रहते हैं वो हॉस्टल में 2-5 मिनट जरूर तालीम करें। करोगे इंशाल्लाह कौन कौन करेंगे इसको। चौथी बात ये आपने अपनी फिक्र की, आपके हॉस्टल और कॉलेज में आप जैसे बहुत सारे मुसलमान होंगे, बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने भाई के लिए हमदर्दी न करे। तो हम उन सब की हमदर्दी करेंगे, उन्हें उनकी हमदर्दी क्या करेंगे? उनकी हमदर्दी ये करेंगे कि हमारे जितने भी मुसलमान बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, वो अल्लाह की नजर में भी वो अच्छे हो जाए। उसके लिए आपको उनकी फिक्र करनी पड़ेगी। देखो आप तो सब दीनदार बच्चे हो इसलिए सारी बातें करते हो, लेकिन वो सारे बच्चे हो सकता है दीनदार ना हो, लेकिन वो हमारे भाई है। भाई कलमे वाला कलमे वाले का क्या होता है? भाई ईमान वाला ईमान वाले का? अरे जरा जोर से बोलो ना, भाई होता है। हमारे नबी ने फरमाया तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक कि अपने भाई के लिए वो चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। वो हमारा भाई है तो हम उनके हमदर्द बनेंगे। बेचारे वो गफलत के माहौल में है, या उनके माँ बाप दीनदार नहीं है, उनके गांव में ऐसा दीन का माहौल नहीं है, इसलिए वो गुनाहों में चले गए। हम क्या करें, हम उनके दोस्ती करें, क्या करें हम उनसे, क्यों हम दोस्ती क्यों करेंगे उनसे? अरे बोलो क्यों करें? दोस्ती करके उनको अच्छा बनाने के लिए, दोस्ती करके उनको अच्छा। इसलिए सबसे पहले हमको उनसे दोस्ती करनी है। क्या कर रही है? दोस्ती। हमने देख लिया कि हमारी क्लास में ये 5 बच्चे हैं, तो हम उनसे दोस्ती करें। कैसे हो भाई? ठीक हो? खैरियत से हो? तबीयत ठीक है? हम अपने वापरने के पैसे लेकर गए थे। जब हम वापरने के लिए दुकान पर गए, उसको कहा उसके लिए कुछ लेकर आए, लो मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ। कभी अम्मी ने कुछ अच्छी चीज बनाई थी घर पर, तो हम 2 समोसे ले गए उनके लिए, उनके लिए कुछ और चीज ले गए। वो खुश हो जाएगा, कच्चा ये इतना निहत स्वार्थ मेरे लिए इतनी मोहब्बत करता है। कौन सा, कौन सी मोहब्बत? निहत स्वार्थ। दुनिया में सब लोग स्वार्थ से मोहब्बत करते हैं, हम कौन सी मोहब्बत करेंगे? अरे बोलो कौन सी? निहत स्वार्थ मोहब्बत करेंगे। वो कहेगा अच्छा अच्छा तुम बताओ, अगर इस तरह तुम उसको मोहब्बत का इजहार करो 1 मरतबा 2 मरतबा, वो तुम्हारा दोस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हमको सबसे पहले उससे दोस्ती कर रहे हैं, और हमारा हेतु क्या है दोस्ती का? अरे हमारा हेतु कि इस आदमी को कैसा बनाना है? अच्छा बनाना। तो दोस्ती करने के बाद उसको अच्छा बनाना। अच्छा बनाने में हम कोशिश करें कि 10 मिनट हमारी पढ़ाई के बाद, या तो स्कूल शुरू होती है उससे पहले 10 मिनट, या रिसेस में 10 मिनट, या छुट्टी के बाद 10 मिनट, हम अपनी क्लास के या अपने स्कूल में ऐसे पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती करें। दोनों की जोड़ी बनाकर, कितने की जोड़ी बनाकर? दोनों की जोड़ी बनाकर मुलाकातें करें कि भाई हमारी क्लास में वो पढ़ता है, चलो हम इससे मिलेंगे और उससे दोस्ती करेंगे। दुआ सलाम हो गई, खैर खैरियत पूछ लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? खैर खैरियत पूछने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको दोस्त बनाएंगे। जब वो दोस्त बन जाए, अगर उसकी पढ़ने में सुस्ती हो रही है, पढ़ने में कच्चा पड़ रहा है, पढ़ने में कमजोर है, उसको याद दिलाएंगे, भाई देखो हम यहाँ पढ़ने आए हैं, अल्लाह का कितना एहसान है, अल्लाह ने हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं, हम ऐसा गुनाह में लगेंगे और हम अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो बुरी बात है। अल्लाह ने हमको नेमत दी, उसकी भी नाकदरी होगी। माँ बाप ने हमको यहाँ पढ़ने भेजा, उसमें खैरत हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूं करके हम उसको उसकी पढ़ाई अच्छी पढ़े उसकी फिक्र दिलाएंगे। क्या करेंगे बोलो? अच्छी वो पढ़ाई पढ़े उसकी फिक्र दिलाएंगे। अगर आपने उसको ये फिक्र दिला दी, तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत आ जाएगी कि ये मेरे हमदर्द है। फिर आगे धीमी गति से आगे की बात करो कि देखो हमको अल्लाह ने पढ़ने भेजा है, हम मुसलमान हैं, तो हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, देखो रोजाना फला वक्त में, आज तुम भी तय करो हमारे साथ नमाज पढ़ने आओगे, उसको अपने साथ नमाज पढ़ने ले जाओ। फिर तालीम का जो तुम्हारा अमल होता है, उसके तालीम के अमल में ले जाओ। इस तरह अगर तुम रोजाना एक आदमी की मुलाकात करो, तो 30 दिनों में कितने आदमियों की हो जाएगी? अरे बोलो कितने आदमियों की? 30 आदमियों की। और एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिनों में कितनों की हो जाएगी? और उसमें तो छुट्टी भी तो होती है भाई, छुट्टी नहीं होती? अरे बोले छुट्टी के दिनों में घर पर करेंगे। अरे छुट्टी के दिनों में कहाँ करेंगे? हमारी कोई दिन छुट्टी नहीं, हमारी कोई दिन, जब क्लास चलती है तो क्लास में मेहनत करेंगे, और क्लास नहीं चलती होगी तो मुसलमान तो मोहल्ले में भी तो रहता है। अरे बोलो वहां मुसलमान मोहल्ले में नहीं रहता? अरे बोलो तो सही भाई। तो जब हम क्लास जाएंगे तो क्लास के बच्चों पर मेहनत करेंगे, और घर पर होंगे तो मोहल्ले के बच्चों पर। हमारी कोई दिन छुट्टी नहीं हमें, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में मेहनत के लिए पैदा किया है। हम कब्र में आराम करेंगे, यहाँ काम करेंगे तो वहां आराम करेंगे, यहाँ काम नहीं किया होगा तो वहां आराम नहीं मिलेगा। तो यहाँ काम करना है, करोगे इंशाल्लाह। तो कौन ये नियत करता है कि मैं मेरे भाई मुसलमान भाई की मैं हमदर्दी करूंगा और दो की जोड़ी बनाकर उसकी मुलाकात करूंगा? मुलाकात में क्या बात कर रहे की? सबसे पहले उससे क्या करने का? दोस्ती करने की। दोस्ती करके क्या देखने का? पहले उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई में चेते से ध्यान से भरता है या नहीं भरता? अगर नहीं भरता तो हम ध्यान दिला देंगे, और अगर उसकी चेते और पढ़ाई अच्छी ध्यान से पढ़ रहा है, उसके बाद हम क्या बात करेंगे उससे? अरे बोलो हम मुसलमान हैं, अल्लाह की निगाहों में हम अच्छे रहे उसकी बात करेंगे कि भाई देखो अल्लाह ने हमको यहाँ मौका दिया है पढ़ाई का, हम यहाँ गुनाह नहीं करेंगे। भाई जरा बात सुने, बातें ना करें, देखो बातें करने वाले अच्छे नहीं लगते। हम एक साल के बाद फिर आपसे मिलेंगे, बार बार मिलने का मौका नहीं आएगा। इस साल मिले हैं, आइंदा साल इज्तिमा में फिर मिलेंगे। तुमने अच्छे से सबक सुना होगा तो तुम जाकर काम करोगे, सुना ही नहीं होगा कैसे काम करोगे। तो दूसरी बात क्या करनी है? एक तो दोस्तों से दोस्ती करनी है। वो कौन से टाइम में दोस्ती करोगे? स्कूल के टाइम में नहीं, मैंने 3 टाइम बताए, कौन से? स्कूल के टाइम से पहले, या रिसेस में, या कितने मिनट? 10 मिनट। अरे बोलो 10 मिनट हो सकता है नहीं हो सकता? तो 10 मिनट हम अपने भाई के लिए हमदर्द बनेंगे। अच्छा बताओ, अगर हम कभी कीचड़ में चले जाएं, कीचड़ में गुनाह में, हम क्या चीज पसंद करेंगे? हमारे दोस्त हमको दोस्ती करके उस गुनाह से निकाले वो पसंद करेंगे, या हमको रहने दे वो पसंद करेंगे? हमको निकाल ले तो जो जो अंदर जा चुके हैं वो भी यही पसंद करते हैं और हमारा अल्लाह भी इसी को पसंद करता है तो हम उसको जरूर करेंगे करोगे इंशाल्लाह। तो कौन 10 मिनट मुलाकातें करेगा 10 मिनट मुलाकातें शाबाश उसमें दोस्ती करें। जब स्कूल में हो तो किसकी मुलाकातें करेंगे स्कूल में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चों की और घर पर हो तो किसकी करेंगे मोहल्ले में रहने वाले मुसलमान की अपने मस्जिद और जमात के साथ मिलकर करोगे इंशाल्लाह। ये कितने काम हो गए एक तो अच्छा पढ़ना है एक नमाज पढ़नी है और तीसरा तालीम करनी है चौथा मुलाकातें करनी है और पांचवा एक काम रह गया वो क्या रह गया अगर अल्लाह तुम हॉस्टलों में रहते हो तो अपने हफ्ते में एक मरतबा थोड़ा सा गश्त कर लो गश्त करके अपने साथियों को किसी कमरे में जमा कर उनको ईमान की आमाल की थोड़ी बात उनको सुनाओ ताकि उन बच्चों को मुसलमान कैसा जीना चाहिए मुसलमान कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए उसका इनको एहसास होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो जाए हम तो उधर के हवा हो जिधर की हम तो उधर के हवा हो कहे मुसलमान ऐसा नहीं होता मुसलमान दुनिया में जहां भी रहेगा वो अपने अल्लाह को राजी रखते हुए रहेगा अल्लाह को नाराज नहीं करेगा इसके लिए हफ्ते में एक मरतबा गश्त करके उन सारे बच्चों को जमा करो और जमा करके 5-10 मिनट में ईमान अमल की बात करके एक मुसलमान कैसा जीना चाहिए उसकी बात समझाना दीन के साथ और दीन की मेहनत के साथ तो गश्त करना है। अगर हम हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो अपने मोहल्ले में गश्त होता है उस गश्त में जुड़ जाओ ताकि अल्लाह रसूल की बात हमारे कान पर पड़े करोगे इंशाल्लाह। और आखिर काम आपका एक रह गया और एक काम और रह गया वो क्या रह गया वो यह रह गया कौन सा काम मरकज इन बच्चों को मरकज हफ्तावारी इज्तिमा में लेकर जाओ। देखो हमारे वहां पंचकोसा होता है हफ्तावारी इज्तिमा होता है ना तो हर जुमेरात को राजकोट में कौन से दिन में होता है मरकज जी इतवार को होता है वाकई में कब होता है जुमा को तो जुमा के दिन वहां अपनी पढ़ाई खराब ना हो इस तरह अपना टाइम सेट करके कम से कम एक हफ्ते में अल्लाह एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं अरे भाई एक हफ्ते में टोटल घंटे कितने बनते हैं एक दिन के 24 168 घंटे हम 168 घंटे इस दुनिया में मशगूल होते हैं भाई सुनो जरा भाई बेटा पीछे सुनो 168 घंटे का एक हफ्ता होता है एक वीक में कितने घंटे होते हैं 168 घंटे तो 168 घंटे में हम कम से कम एक घंटा तो अल्लाह रसूल की बात सुने वो होता है हफ्तावारी इज्तिमा के दिन हफ्तावारी इज्तिमा के दिन अपने सारे साथियों को दावत दो और दावत देकर उनको हफ्तावारी इज्तिमा में लाओ हफ्तावारी इज्तिमा शबगुजारी कहते हैं पंचकोसा कहते हैं मरकज का दिन कहते हैं उसमें इन सारे बच्चों को लाओ जब ये बच्चे उस माहौल में आएंगे ना तो उनकी विचारधारा बदल जाएगी क्या बदल जाएगी बोलो हम लोग एक मरतबा कच्छ में गए एक डॉक्टर साहब आए वो डॉक्टर साहब आकर कहने लगे कि आप मुझे पहचान दो ना भाई मैं तो आपको नहीं पहचान रहा हूं कल मैं गोधरा कॉलेज में श्यामला जी कॉलेज में BUMS में पढ़ाई करता था तो मैंने आपको वहां मिला था तो मुझे वहां कैसे आप मिले थे कल मैं तो आपको नहीं जानता था मेरे घर में तो तबलीग बिल्कुल नहीं मैं तो बहुत बेदीनी वाली गुनाह वाली जिंदगी गुजारता था फिर का हमारे वहां कुछ मुसलमान बच्चे पढ़ते थे तो तुम्हारे वहां मरकज में संडे को वो जुमरात के प्रोग्राम होता है उसमें वो लोग आते थे उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ प्रोग्राम होता है उसमें तू चल तो मुझे शुरू में अच्छा भी नहीं लगा फिर जब मैं आया तो मैंने सुना हो यहाँ अल्लाह रसूल की बात होती है दीन की बात होती है फिर उन्होंने अपने घर से वो टिफिन लाए थे मुझे खाना भी खिलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा फिर मैं जुमेरात आता गया तो होते होते मैं बेदीनी से दीन पर आ गया बेनमाजी में से नमाजी बन गया फिर उसने क्या कहा मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ आए हो हमारे गांव में हमारे जिले में तो मैं स्पेशल अपने वहां से आपको मिलने के लिए आया हूँ अच्छा बहुत अच्छा तो मिलकर हमसे गया फिर क्या कहने लगा पता है मैं रात को आपको मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर या उनको लेकर आना चाहता हूँ आओ इजाजत है हमने कहा भाई हम तो इसीलिए आए और क्यों आएंगे हमको और यहाँ क्या काम है तो रात को आया अपने डॉक्टरों की टीम लेकर तो हम लोग बैठे थे तो जो कच्छ के जिम्मेदार थे ना वो डॉक्टर आए एकदम से खड़े हो गए अरे भाई तुम क्यों खड़े हो गए अरे ये कैसे आ गया ये तो हमारे वहां का फला डॉक्टर है उसके वहां तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वो तो इतना बड़ा डॉक्टर है और ये कैसे आ गए ये ऐसा डॉक्टर वो कैसे आ गया 4-5 डॉक्टरों की टीम आई तो एकदम उनके तो आंखें फट गई कि हम तो इसको ला भी नहीं सकते हमने कहा इन सबको ये एक लड़का लाया है अच्छा भाई ये कहां से लाया ये लड़का तबलीग से जुड़ गया था स्कूल के जमाने में हफ्तावारी इज्तिमा में आता था ये सब उसके साथ पढ़ाई करने वाली बेच है ये इसमें गया इन सब को लेकर आया तो कहने लगे हो इतनी बड़ी कमाई हो गई इसको तो हम ला ही नहीं सकते अब ये सारों का जरिया कौन बना एक लड़का और वो लड़के को दीन कहां से मिला हफ्तावारी
اجتماع سے. تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھو, اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے خود بھی ہفتہ وار اجتماع میں جاؤ اور آپ کے سارے سرکل کو لے کر جاؤ تاکہ ان کے اللہ کانوں پر اللہ رسول کی کوئی بات پڑے. کرو گے انشاءاللہ. اور آخری بات کیا کہ تمہارے اندر چارجنگ ہوتا رہے. کیا ہوتا رہے؟ تم ڈسچارج نہ ہو جاؤ. کیا نہ ہو جاؤ بولو؟ ڈسچارج نہ ہو جاؤ. اس کے لیے ہر 15 دن میں, اگر تمہیں مہینے میں چھٹی ملتی ہے 3 دن کی, تو 3 دن کہاں جاؤ؟ 3 دن جماعت میں جاؤ. لیکن اکثر تمہیں 3 دن کی چھٹی ملتی نہیں ہے, تو تم دیکھو کہ تمہاری پڑھائی اگر نہیں خراب ہوتی تو 2 دن چلے جاؤ. تم اپنے مرکز والوں سے کہو کہ ہمارے پاس 2 دن ہے, مسجد والوں سے کہو کہ ہم کو کسی جماعت میں جوڑ دو, ہم 2 دن لگائیں گے. اگر تمہارے پاس 2 دن نہیں ہے, 3 دن نہیں تو 2 دن جاؤ. 2 دن کی چھٹی نہیں تو تم 2 دن نہیں تو 24 گھنٹے جاؤ. کتنے جاؤ؟ سیٹرڈے سنڈے تو سب کی چھٹی ہوتی ہے, سیٹرڈے سنڈے 24 گھنٹے جایا کرو. اگر 3 دن جاتے ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ جاؤ, اور اگر 24 گھنٹے جاتے ہو تو ہر 15 دن میں 1 مرتبہ جاؤ. کتنے دن میں؟ ہر 15 دن میں. خود بھی جاؤ اور اپنے اور سرکل کو بھی لے کر جاؤ, تاکہ 24 گھنٹے جس طرح ابھی تم اجتماع میں آئے ایک اچھے لوگوں کے ماحول میں رہتے ہو, ایسے کم سے کم 15 دن میں 1 مرتبہ 24 گھنٹے جا کر اچھے لوگوں کے ماحول میں رہو, تاکہ ہماری وچار دھارا اچھی رہے. کیسے رہے؟ ارے بولو, کیا اچھی رہے؟ وچار دھارا ہماری اچھی ہوگی نا تو جیون اچھا ہو جائے گا. اس لیے اگر 3 دن جاتے ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ 3 دن جاؤ, لیکن پڑھائی خراب کر کے نہیں جانا. پڑھائی کو خراب نہ کرتے ہوئے 3 دن جاؤ. اگر 3 دن نہیں ہو سکتا, 2 دن چھٹی ہے تو 2 دن جاؤ, اور 2 دن نہیں ہو سکتے تو 1 دن جاؤ, لیکن ضرور 24 گھنٹے ہر 15 دن میں لگاؤ. تو لگاؤ گے انشاءاللہ. کون لگائے گا؟ اور جب تمہارا بڑا ویکیشن ہو جائے 10 دن کا ہو تو پھر 10 دن جاؤ, 20 دن کا ویکیشن ہو تو 20 دن جاؤ, اور 40 دن کا ویکیشن ہو تو کتنے دن جاؤ؟ 40 دن. اس میں یہ کہ جو فکر اللہ نے تمہیں دی ہے وہ ہم پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کو سمجھائیں گے. پوری دنیا بھائی, تم بیٹا بہت دیر سے باتیں کرتے ہو, ایسا نہ کرو. اگر تمہارے 10 دن کا ویکیشن ہے تو 10 دن لگاؤ, 20 دن کا ویکیشن ہے 20 دن لگاؤ, اور 40 دن کا ویکیشن ہے تو کتنے دن لگاؤ؟ 40 دن لگاؤ. ہاں, پوری دنیا میں مسلمان بسا ہوا ہے, پوری دنیا میں کالج ہیں, اسکولیں ہیں. اللہ نے آپ کو آوڑت دی ہے. کیا دیا بولو؟ اللہ آپ کو آوڑت دی ہے ان سب کاموں کے کرنے کی. ان علاقوں میں جا کر ہم ہر ایک کی ہمدردی کریں گے تاکہ ان کو بھی یہ اچھی زندگی مل جائے. کل قیامت کے دن ہم سے ہمارے نبی خوش ہو جائیں گے. اچھا بھائی, مجھے بتاؤ, میرا بھائی کہیں بھٹک گیا ہو اور کوئی اس کو وہاں سے نکال لائے تو میرا دل ٹھنڈا ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بولو, آگ میں چلا گیا کوئی بچا لے تو میرا دل ٹھنڈا ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر میرا بھائی ڈوبتا ہو اور کوئی بچا لے تو میرا دل ٹھنڈا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہ حضور علیہ السلام کی امت کے بچے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, کیسی کیسی غلط زندگیوں میں ہیں. ہم چلے میں جا کر 10 دن جا کر 20 دن جا کر 24 گھنٹے جا کر ان پر تھوڑی سی محنت کر کے ان کو اس دلدل سے نکال لیں گے تو سب سے بتاؤ, سب سے زیادہ دل کس کا خوش ہوگا؟ اللہ کے نبی کا. اللہ کے, کیونکہ وہ نبی کے کیا ہے؟ امت میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت بہت والی ہے. نبی کو اپنی امت کیا ہے؟ جب ہم ان کے اوپر پیار کریں گے تو ہم کو ہمارے نبی کا پیار ملے گا, تو ہم سب نبی کا پیار لینے والے بنے لوگ ہیں انشاءاللہ. تو نبی کس سے راضی ہوگا؟ نبی کیسے؟ ان کے نبی کی امت کی ہمدردی کر کے. تو ہم ان کے نبی کی امت کی ہمدردی کریں گے. اس کے لیے اپنے ویکیشنوں میں انشاءاللہ 10 دن ہے تو 10 دن, 20 دن ہے تو 20 دن, 40 دن ہے تو 40 دن. لوگوں کی طرح ہم اپنا ٹائم خراب نہیں کریں گے ادھر ادھر پکنک میں جا کر. ہم اللہ کے راستے میں جا کر ہم یہ خود بھی دین سیکھیں گے اور لوگوں کو بھی دین سکھائیں گے. سیکھو گے انشاءاللہ. اور جب تمہاری جاب اور پڑھائی پوری ہو جائے, تمہاری پڑھائی پوری ہو جائے, جاب شروع کرو, اس سے پہلے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی کو اچھی زندگی بنا کر پھر اپنی جاب میں جاؤ. اس کے لیے پڑھائی پوری کر کے پہلے 4 مہینے لگا لو. کتنے لگا لو بولو؟ 1 مرتبہ 4 مہینے لگا لو گے نا تو تمہیں سنتوں والی, شریعت والی, دین والی, پابندی والی زندگی جینا آ جائے گا. آدمی جیسے ماحول میں رہتا ہے ایسی زندگی جیتا ہے. جب تم اسکول کالج کے ماحول میں ہو تو اسکول کالج کی طرح رہتے ہو. جب تم 4 مہینے دینداری والے ماحول میں رہو گے نا تو سنت, شریعت والی, اطاعت والی, اور سب سے بڑی دینداری یہی ہے کہ اللہ کے حکم زندگی میں آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے. دیکھو لوگ دنیا میں الگ الگ اسٹائلوں سے بال کٹواتے ہیں, الگ الگ اسٹائلوں کے کپڑے پہنتے ہیں. کیوں؟ ان کو وہ اسٹائل پسند ہے, ان کو وہ اسٹائل والا پسند ہے. اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کے راستے کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے. اللہ جو راضی ہوتے ہیں وہ نبی والی زندگی سے. نبی والی زندگی اگر نہیں بنی تو ہم اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گے. ये चार चार महीने जब तुम्हारे लगेंगे ना तो तुम्हारी जिंदगी नबी वाली जिंदगी बन जाएगी। तो अल्लाह को भी प्यारे हो जाओगे, नबी को भी प्यारे हो जाओगे और अल्लाह की पब्लिक को भी प्यारे हो जाओगे। इसके लिए चार चार महीने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले चार चार महीने लगाओ, इस मुबारक जिंदगी को सीखो, अमानतदारी को, ईमानदारी को सीखो। वरना तो लोग कुर्सियों पर बैठकर करप्शन करते हैं, लोग कुर्सियों पर बैठकर कलम को गलत इस्तेमाल करते हैं, जबान गलत इस्तेमाल करते हैं, करप्टेड लोग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बोलो? हम ऐसे नहीं बनेंगे, हम अमानतदार, दयानतदार, दीनदार। इसके लिए अपने चार चार महीने लगाओ, ऐसे ऑल प्रूफ हो जाओ कि कहीं से भी झोंका आए हमको कोई असर न करे, पैसों का झोंका आए या जॉब लड़कियों के बीच में आए हमें कोई चीज बिगाड़ ना सके। ऑल प्रूफ। कैसे प्रूफ? ऑल प्रूफ। लेकिन उसके लिए चार चार महीने लगाकर अपनी बॉडी को ऐसे बनाओ कि हम कहीं मुतासर ना हो जाएं। इसके लिए ये सब तय करो कि जिसकी पढ़ाई पूरी होगी इंशाल्लाह हम पहले चार चार महीने लगाएंगे, फिर अपनी जॉब और सर्विस करेंगे। सब नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है? चार चार महीने लगाएंगे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इस साल किसकी किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है जरा बताओ, इस साल किसका किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है? एक और दो तीन चार और इस साल पांच छह सात और। तो आप लोग तो सब तय कर लो कि इंशाल्लाह हम हमारी पढ़ाई पूरी हो रही है पहले चार महीने लगा देंगे, लगाओगे इंशाल्लाह। चलो खड़े होकर बता दो, खड़े हो जाओ जिसकी पढ़ाई पढ़ाई। भाई तुमने सब बच्चे तुमको नहीं कहा, देखो ये ना समझे ना समझ किया, इसलिए बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने ये पूछा इस साल जिसकी कॉलेज में पढ़ाई पूरी हो रही है अपने अपने शॉपों में वो बच्चे। भाई बेटा बैठ जाओ, ओ बेटा बैठ जाओ, ए चूजे ए मुन्ने। अच्छा बात सुनो। मैंने ये कहा है इस साल जिसकी पढ़ाई पूरी हो रही है वो जरा खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। माशाल्लाह हमारे भाई भाई, और किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है इस साल? किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है? एक दो और किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है? और भाई किसी की पढ़ाई पूरी हो रही है? भाई और आज इस साल किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है? चलो आप मौली ताहिर साहब के पास जाओ, आप दोनों मौली ताहिर साहब के पास जाओ। मौला ताहिर साहब देखो इनकी कब पढ़ाई पूरी हो रही है, कब करेंगे देख लो, समझ लो। अच्छा भाई ये बच्चे वो हैं जिसकी पढ़ाई रनिंग है, बराबर है? अभी तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई ना? अरे भाई तो तुम्हारे वेकेशन में तुम जाओगे इंशाल्लाह।